તારીખ 30/6/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 504 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 492
પત્રાંક 504 ગુજરાતી પ્રશ્ને 406 હિન્દી મેં 430 પત્ર કા વિષય પહેચાન કરને કે વિષય મેં હૈ તીન પ્રકાર કે સજીવન મૂર્તિ હોતે હૈં તીનોં જગહ સે પહેચાન હોતી હૈ यहाँ सर्वज्ञ के विषय में एक बात चली है कि सर्वज्ञ को तो कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती कि जिससे राग मालूम पड़े, रागादि युक्त परिणाम भी नहीं होते और राग पूर्वक की कोई प्रवृत्ति भी नहीं होती। संपूर्ण वितरागता होने के बावजूद भी समोसरण में हमने सर्वज्ञ को क्यों नहीं पहचाना? ऐसी एक समस्या खड़ी होती है, उसका समाधान इस पत्र का विषय है। शुरू में तो अपने विषय में थोड़ी बात करी है कि है मन का वचन का तथा काया का व्यवसाय जितना चाहते हैं उसकी अपेक्षा इस समय विशेष रहा करता है। 27वां वर्ष है, मन वचन काया की प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं चाहते हुए भी थोड़ी ज़्यादा प्रवृत्ति हो रही है। ऐसा ही कोई उदय योग है कि खुद नहीं चाहते हुए भी मन वचन काया के व्यवसाय माने प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है और इसी कारण से आपको पत्रादि लिखना नहीं हो सकता और इस कारण से पत्र का लिखना नहीं हुआ है। व्यवसाय के विस्तार की इच्छा नहीं की जाती है फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है। इस व्यवसाय के विस्तार की इच्छा, धंधा का विस्तार हो जाए, व्यापार बढ़ जाए, ऐसी इच्छा नहीं है, फिर भी व्यापार का विस्तार हो रहा है। चाहते हैं कि कुछ कम हो तो अच्छा है, लेकिन कम तो नहीं होता है, प्रवृत्ति बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि वह व्यवसाय अनेक प्रकार से वेदन करने योग्य है। तो ऐसा जो व्यवसाय है तो उसका तो पूर्व का अपराध है, वहाँ समाप्त हो जाता है। जीव अगर नया अपराध करता है तो नया कर्म बंधन होता है और निरपराध परिणाम रहता है तो नया कर्म बंधन नहीं रहता है, ऐसा होता है। तो कहते हैं कि ठीक है, भले ही उदय में आए और खिल जाए, वो एक करज है, पूर्व कर्म का निबंधन तो जीव का लिया हुआ कर्ज है, किया हुआ कर्ज है। जो कर्ज है वो कर्ज को मिटा देना, प्रामाणिकता से किया हुआ कर्ज को लौटा देना, वो ठीक है, अच्छा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो जब है कि उसी वक्त जीव को कर्ज वापस करते हुए राग द्वेष हो जाए। जैसे कोई पैसा वापस करने में अनिच्छा हो जाए तो ये बात तो ठीक नहीं है। लिया हुआ पैसा वापस करना और ब्याज समेत वापस करना ये तो अच्छी बात है, और जो शक्तिमान होते हैं वो तो चला करके दे देते हैं कि भाई आपके पैसे लिए थे, जरूरत थी तब तो लिया था, अब तो आप ब्याज समेत वापस ले लो, उनको नहीं रखना है। तो अगले के घर जाके वापस करेंगे, और कोई लेने को आए तो हर्ष से वापस करेंगे कि अच्छा हुआ आप आ गए वरना हमको आना पड़ता, हमारा आने का एक चक्कर बच गया, हमारा परिश्रम आपने बचाया है, तो हर्ष से दे देते हैं। ऐसे किए हुए कर्म को वेदना, वेदन करना मैंने भोगना है या वेदन करना लिया है ना, अनेक प्रकार से वेदन करने योग्य है, मैंने बांधे हुए कर्म भोगने योग्य है, ऐसी अनिच्छा कभी नहीं करनी चाहिए कि हमें हमारे बंधे हुए बांधे हुए कर्म को नहीं भोगना है। ये प्रमाणिकता नहीं है, तो व्यावहारिक है प्रमाणिकता हो जाती है, इसलिए भले ही उदय में आ जाए हम हमारे परिणाम से विषमता को नहीं प्राप्त करेंगे, संभाव में रहेंगे, तो ये बेचारे जो है चले जाएंगे, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही है, हम हल्के हो जाएंगे, कर्ज से हल्के हो जाएंगे। नहीं, अगर संपरिणाम में रहता है तो सत्संग में रहकर भी क्या करना है, और सत्संग भी एक उदय है और क्या चीज है। संसार में आठों कर्म का उदय सभी प्राणियों को निरंतर रहता है, एक विग्रह गति में सात कर्म का उदय है, आयु कर्म का उदय एक समय दो समय के लिए नहीं होता है, बाकी तो संसार में आठों कर्म का उदय निरंतर सबको रहता है। जैसे आयु कर्म का उदय निरंतर है, वैसे बाकी के सात कर्म का भी निरंतर उदय सबको रहता ही है। ऐसा प्राय बनता है, ऐसी योग्यता नीचे की भूमिका में होती है, ऐसा होता है कि संग का रंग चढ़ता है, और सत्संग में नुकसान भी होता है और सत्संग से लाभ भी होता है, ऐसा निमित्ताधीन वृत्ति जहाँ तक है वहाँ तक तो ऐसा होगा, इसलिए विवेक करना तो अच्छा ही है। लेकिन संयोग का वियोग का कर्ता हर्ता कोई ज्ञानी के अज्ञानी हो सकता नहीं है, वो बात तो हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है, वस्तु के स्वरूप की मर्यादा का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता, न ज्ञानी कर सकता तो फिर अज्ञानी का सवाल नहीं, अरे जिनेंद्र भी नहीं कर सकते। गुरुदेव तो कहते थे कि तीर्थंकर भगवान की वाणी ओंकार ध्वनि छूटती है, वो वाणी करते नहीं है, छूटती है, वो तो स्वतः छूटती है, वो करते बरते नहीं है, न करने का उसको है, न बंद करने का है, न चालू करने का है, वो स्वतः होती है, स्वतः बंद होती है, बस। वो तो उदय ही है और क्या है, पुण्य का उदय है और क्या है। और ऐसा लगता है कि वह व्यवसाय अनेक प्रकार से वेदन करने योग्य है कि जिसके वेदन से पुनः उसका उत्पत्ति योग दूर होगा, ऐसे संभाव से या सम्यक प्रकार से हम वेदन करेंगे कि फिर से ऐसा उदय में हमको आना पड़ेगा, नहीं। अभी व्यवसाय का उदय है, ऐसा कर्म है, लेकिन हम हमारे परिणाम ऐसे रखेंगे कि फिर से हमें व्यवसाय का उदय आएगा नहीं, इसके उत्पत्ति से दूर रहेगा, यानी निवृत्त होगा। मुमुक्षु उसका प्रयास करें, मुमुक्षु की भूमिका प्रयास की भूमिका है और ज्ञानी की भूमिका तो ज्ञान विजन में रहने की है, उतनी बात है। मुमुक्षु प्रयास करे, उदय तो अनेक प्रकार के तीव्र मंद आएंगे, परिणाम जैसा उदय आवे वैसा करना ही पड़े, ऐसी कोई वस्तु स्थिति तो नहीं है। जीव स्वतंत्र रूप से परिणाम करेगा, वो स्वतंत्रता को संभाले, ऐसे मुमुक्षु को भी श्रद्धा ज्ञान होना चाहिए। तो क्या एक भूमिका अनुसार है, एक भूमिका नहीं है, जो मुमुक्षु जो भूमिका में है उसी अनुसार वो प्रयास करें। जैसे उत्कृष्ट भूमिका में तो ज्ञाता रहने का प्रयास करें और नीचे की भूमिका में आत्मकल्याण की भावना तीव्र करें, तो उदय में उतने परिणाम लगेंगे नहीं। ऐसे ऐसे भूमिका तो अनेक प्रकार की है, लेकिन दो स्टेज ले लेवे मोटी मोटी बात करके, कि प्रारंभ में आत्मकल्याण की भावना विशेष होती है जहाँ तक स्वरूप की पहचान नहीं होती है। जब से स्वरूप की पहचान होती है तब से स्वरूप आश्रय की पुरुषार्थ की तीव्रता जितनी या स्वरूप की महिमा जितनी आती है उतना उदय से भिन्न रहने का प्रयास होगा। ऐसे दो प्रकार की भूमिका ले ले। कि जिसके वेदन से पुनः उसका उत्पत्ति योग दूर होगा, यानी निवृत्त होगा, नाश हो जाएगा, फिर से ऐसी प्रवृत्ति करनी पड़ेगी नहीं, ऐसा उदय नहीं आएगा। कदाचित प्रबल रूप से उसका निरोध किया जाए तो भी उस निरोध रूप क्लेश के कारण आत्मा आत्मा रूप से विसरसा परिणामी परिणाम की तरफ परिणाम नहीं कर सकता, ऐसा लगता है। ये शास्त्रीय परिभाषा में बात आई है, बात तो सीधी सादी है कि कदाचित प्रबल रूप से उसका निरोध किया जाए, प्रबल रूप से मैंने हट करके जोर से उसका निषेध करें कि हमें धंधा नहीं करना है, व्यवसाय नहीं करना है, हम त्याग कर दें, तो भी उस निरोध रूप क्लेश के कारण, ये हट क्या है, क्लेश है, क्लेश के परिणाम है, उसके कारण आत्मा आत्मा रूप से विसरसा परिणाम की तरह परिणाम नहीं कर सकता। विसरसा परिणाम इतने स्वाभाविक, जो स्वाभाविक परिणाम है तो आत्मा आत्मा रूप से स्वाभाविक स्वाभाविक ढंग से परिणाम नहीं कर सकता, अस्वाभाविक परिणाम करेगा, हट से कृत्रिमता आएगी, ऐसा लगता है। अपने परिणाम को देखते हुए वो लिखते हैं कि अगर हम हट करें तो सहजता नहीं रहेगी और हट के परिणाम है वो क्लेश रूप हो जाएंगे और सहजता नहीं रहेगी, तो वो परिणाम इस तरह से करना हमको ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया कि उदय से हटने के बजाय परिणाम को उदय से हटाया और यही सम्यक प्रकार है और यही सही प्रकार है। उसमें ऐसा नहीं है कि उदय में हमें रहना है, उदय की रुचि नहीं है वहां, अगर उन्हीं की रुचि हो तो स्वच्छंद हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी मुमुक्षुओं को सावधानी रखना योग्य है कि ज्ञानी की ऐसी बात देख करके खुद उदय को पसंद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदय में रहने की तो रुचि बिल्कुल मुमुक्षु को होती है, तो फिर ज्ञानी को तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, उनको उसको भी बिल्कुल रुचि नहीं होती है। फिर भी जब ऐसा लगता है कि ये उदय मिटाया जा सकेगा नहीं, अर्थ करेंगे तो परिणाम निम्न कक्षा में आ जाएंगे, ऊपर के कक्षा में नहीं जाएंगे, तो फिर उदय में रह करके परिणाम को कैसे हटाएं? वो अंदर का पुरुषार्थ मुमुक्षु भी चालू करेगा और ज्ञानी को तो अवश्य अवश्य होगा ही होगा, ऐसी बात है। इसलिए उस व्यवसाय की अनिच्छा रूप से जो प्राप्ति हो, क्या ठीक है प्राप्ति होगी ऐसा नहीं, अनिच्छा रूप से प्राप्ति है और रुचि से प्राप्ति है, रुचि तो है ही नहीं, वो बात तो रखी। इसलिए उस व्यवसाय की अनिच्छा रूप से जो प्राप्ति हो उसे वेदन करना, वेदन करना मैंने सम्यक प्रकार से वेदन करना, पुरुषार्थ सहित वेदन करना। यह किसी प्रकार से विशेष सम्यक लगता है और वो पद्धति हमको सही लगती है, विशेष रूप से सही लगती है। बजाय हठ से उदय को हटाएं, हम इसी उदय में हमारे परिणाम को हटाएं, वही हमको सम्यक पद्धति लगती है। तो पुरुषार्थ का कार्य क्षेत्र जो हमारा परिणाम है उससे हमको हमें फायदा होगा। पुरुषार्थ का कार्य क्षेत्र उदय नहीं है, पुरुषार्थ का कार्य क्षेत्र हमारा परिणाम है। अर्थ नहीं करता है, सहज प्रयास चलता है। उदय के बारे में भी थोड़ा प्रयास चलता है, लेकिन जब मालूम पड़ जाता है कि उदय है छोड़ने वाला नहीं है ऐसा दिखता है, तो फिर वो अपने परिणाम पर आ जाते हैं कि परिणाम को हटाओ ना। अब उदय खिसकेगा वो दिखता नहीं है, जब ये पक्का हो गया कि वो खिसकेगा नहीं और अपन इसका करता हरता है नहीं, पहुंच हमारी होती नहीं है, तो सावधान होकर के परिणाम को हटाएंगे, फिर उदय से दुर्लक्ष कर लेंगे। तो उदय से दुर्लक्ष हो गए, यही उदय की अनिच्छा हो गई, उदय की अरुचि हो गई। तैयार है मतलब हम जुड़ेंगे नहीं उसमें, हम उदय को अनुसरण करेंगे नहीं, हमारे परिणाम उदय को अनुसरण नहीं करेंगे, इतना पुरुषार्थ में वो आते हैं और वो प्रकार सम्यक लगता है। अब जो पत्र का विषय है वो सर्वज्ञ के विषय में है। किसी प्रकट कारण का अवलंबन लेकर विचार कर परोक्ष चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुष को मात्र सम्यक दृष्टि रूप से भी पहचान लिया जाए तो उसका महान फल है, और यदि वैसे न हो तो सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहने का कोई आत्मा संबंधी फल नहीं है ऐसा अनुभव में आता है। अपना अनुभव को कह बता रहे हैं, क्या कहते हैं, किसी प्रकट कारण का अवलंबन लेकर के। प्रकट कारण दो तरह का है, एक सर्वज्ञ देव की प्रतिमा प्रकट है और एक सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ को बताने वाले शास्त्र है उसमें वाणी प्रकट है, कि सर्वज्ञ ऐसे होते हैं, उसका अवलंबन लेकर के, या तो जिन प्रतिमा जी का अवलंबन लेकर के या तो शास्त्र का अवलंबन लेकर के विचार करके, इसी विषय में विचार करके कि सर्वज्ञ कैसे होते हैं, परोक्ष चले आते हुए, अभी वर्तमान में सजीवन मूर्ति विद्यमान नहीं है सर्वज्ञ भगवान, परोक्ष चले आते हैं, जैसे आज परिस्थिति है वैसी, कि आज प्रतिमा जी है, शास्त्र भी है, ऐसे परोक्ष चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुष को मात्र सम्यक दृष्टि रूप से भी पहचान लिया जाए, सर्वज्ञ रूप से पहचानने का तो कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी बात है। मात्र सम्यक दृष्टि रूप से पहचान लिया जाए तो भी उसका महान फल है। ऐसा क्यों लिया, ऐसा क्यों लिया कि सर्वज्ञ के परिणाम जो है चारित्र मोह के, उसमें उतनी सूक्ष्मता है, इतनी सूक्ष्मता है कि भगवान को चारित्र मोह का सर्वथा अभाव है और उसकी जगह शुक्ल ध्यान के परिणाम चारित्र गुण में परिणमन हो रहे हैं। कैसे परिणाम है, शुक्ल ध्यान के परिणाम है, वो शुक्ल ध्यान के परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं जिसकी पहचान मुमुक्षु जीव कर सकता नहीं है। इसकी बराबरी में संयुक्त के परिणाम है वो उतने सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि ये चतुर्थ गुण स्थान में भी होते हैं, जबकि शुक्ल ध्यान के परिणाम चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होते हैं। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा को संपूर्ण वितरागता होने पर भी वितरागता से इसकी पहचान होती ही नहीं है, क्योंकि वो शुक्ल ध्यान रूप वितरागता है, बहुत सूक्ष्म है, स्वभाव बहुत सूक्ष्म है, आत्म स्वभाव बहुत सूक्ष्म है, और स्वभाव के ऊपर ऊपर की उच्च कोटि की दशा जितनी होती है वो अधिक अधिक सूक्ष्म होती है। इसलिए ऐसे दशा को पहचानना नीचे वाले मुमुक्षु के लिए आसान नहीं है, कठिन है। वो तो कहेंगे, वो भी बाद में कहेंगे, पहले तो परोक्षता की बात लिए कि अभी जिन प्रतिमा है और जिन वाणी भी है, और ऐसे कारण को पाप प्राप्त करके इसका अवलंबन लेकर के, प्रतिमा जी का अवलंबन लेकर के या शास्त्र की वाणी का अवलंबन लेकर के, और उस पर विचार करके परोक्ष चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुष को मात्र सम्यक दृष्टि रूप से भी पहचान लिया जाए, सर्वज्ञ रूप से तो नहीं पहचानेंगे लेकिन सम्यक दृष्टि के रूप में अगर पहचान लिया जाए, मैंने उसका सम्यक दर्शन को पहचाना जाए तो उसका महान फल है। और यदि वैसे न हो, मैंने इसकी पहचान नहीं हुई, तो फिर सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहने का कोई फल नहीं है, आत्मा संबंधी फल नहीं है, पुण्य का फल आएगा वो आत्मा संबंधी नहीं है, ऐसा कहते हैं। सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कह करके हम पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, कल्प वृक्ष का फूल और मणि रत्न का दिया आरती, लेकिन उसे पुण्य बंधेगा, आत्मा संबंधी कोई फल नहीं आएगा, भले सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहा फिर भी, क्योंकि पहचाना नहीं है। ऐसा अनुभव में आता है, ये हमारा अनुभव बोलता है कि इसका कोई आत्मा संबंधी, कोई आत्मा को लाभ होवे, आत्मा संबंधी का मतलब आत्मा को लाभ होवे, आत्मा को शांति होवे, आत्मा को शुद्धता और पवित्रता हो गए ऐसा कोई फलाने वाला नहीं है। ओग संज्ञा से बिना पहचान का मतलब, ओग संज्ञा से पूजा भक्ति कितनी भी करे उसका आत्मा संबंधी कोई फल नहीं आता। ऐसा है,
है?
हाँ वो पुण्य पुण्य वो संसार में ले जाएगा। भले ही लोग पुण्य को सुशील कहते हैं और पाप को कुशील कहते हैं, लेकिन जो संसार में ले जाए उसको सुशील क्या कहना। कुंदकुंद आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार इस तरह से शुरू किया है कि लोग पाप को कुशील कहते हैं और पुण्य को सुशील कहते हैं लौकिक तौर से, लेकिन अलौकिक प्रकरण में तो दोनों कुशील है क्योंकि दोनों संसार में ले जाते हैं, इसलिए दोनों का फल एक आता है संसार में ले जाने का। ऐसे संसार में ले जाए उसको सुशील कैसे कहेंगे हम? हम तो कहेंगे नहीं। इसका मतलब इसलिए सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहने का कोई फल नहीं, ऐसा नहीं कि आत्मा संबंधी फल नहीं है। परिणाम तो कोई निष्फल नहीं होते हैं, लेकिन संसार फलाएगा, पुण्य का फल आएगा, वो संसार बढ़ाएगा, ऐसा हमारे अनुभव में आता है। वो पढ़ करके नहीं कहते, हमारे अनुभव से कहते हैं, ऐसा कहते हैं। जानकारी मिली है इसलिए कहते हैं, वो बात नहीं है। हमारे गुरु ने कहा है इसलिए कहते हैं, वो बात भी नहीं है। हमारे अनुभव में वो बात आती है। अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष सर्वज्ञ पुरुष को भी समोसरण में विराजमान हो, जीवंत स्वामी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जीवंत स्वामी। और हम भी समोसरण में उपस्थित हो, यदि किसी कारण से मैंने ऐसा पुण्य योग से प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा हो, विचार से और अवलंबन से, विचार भी करे कि ये सर्वज्ञ हम मानते हैं और उसका अवलंबन ले, पूजा भक्ति करे, सम्यक दृष्टि रूप से भी न जाना हो तो उसका आत्म प्रत्यय फल नहीं है। प्रत्यक्षता में भी उसका सम्यक दर्शन को पहचानना पड़ेगा। बहुत विचक्षणता से ये बात का निरूपण करते हैं कृपालु देव। क्यों? कि जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं उसको तो केवल ज्ञान और पूर्ण वितरकता होती नहीं है, और जो मुनिराज होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, उतनी वीरती बाह्य त्याग और उतनी वितरकता भी सम्यक दृष्टि को चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होते हैं। तो फिर तीन सजीवन मूर्ति में कॉमन फैक्टर कौन सा है? सम्यक्त्व है, वो कॉमन फैक्टर है। सम्यक्त्व को पहचाना, उसने सम्यक दृष्टि ज्ञानी को पहचाना, उसने मुनिराज को भी पहचाना और उसने सर्वज्ञ को भी पहचाना, क्योंकि तीनों में ये कॉमन है। अगर ऐसा हो, कोई ऐसी गाथा के आधार ले ले प्रवचन सार के, कि देखो वहां तो जो द्रव गुण पर्याय से अरिहंत को जानते हैं वो आत्मा को पहचानते हैं, वो बात लिया है, तो फिर सम्यक दृष्टि की पहचान से कोई लाभ होता है वो बात रहने वाली नहीं है। जबकि सम्यक दृष्टि की पहचान हो वो निर्वाण पद का अधिकारी होता है, और उसको मुनि की और सर्वज्ञ की पहचान आ जाएगी, यानी आ गई उसके परिणमन में, उसके ज्ञान में। लेकिन जिसको सर्वज्ञ की पहचान सर्वज्ञ के ओर से हो तो वो सम्यक दृष्टि को पहचानेगा नहीं। सर्वज्ञ को केवल ज्ञान से कोई पहचानता है तो वो श्रमिक दृष्टि को नहीं पहचानेगा, क्योंकि श्रमिक दृष्टि को तो केवल ज्ञान है ही नहीं। इसलिए तीनों सजीवन मूर्ति में पहचान का कोई मुद्दा होता है तो वो सम्यक दर्शन है, ऐसा कहते हैं।
चरित्र से देखना ही नहीं है,
हाँ,
चरित्र से पहचानने की कोशिश ही नहीं
करनी। नहीं, चरित्र से पहचानने की कोशिश करोगे तो सम्यक दृष्टि में तो भूल अवश्य हो ही जाएगी, क्योंकि इसको तो व्रत नहीं, पचकाण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई न, व्रत नहीं, पचकाण नहीं, नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई न, महापद्म तीर्थंकर थे श्रेणी का ठाणांग जो ठाणांग सूत्र में इसका चरित्र आया है, जो वार अंग है उसमें ठाणांग है, तो ठाणांग सूत्र में श्रेणी महाराजा का चरित्र आया है भगवान महावीर की वाणी में। ये जो सैनिक राजा है, समुसरण में विराजमान है, सहायक सम्यक दृष्टि है, उसको व्रत पचकाण और एक भी वस्तु का त्याग
नहीं है,
नहीं है। फिर भी वो आने वाली 24 तीर्थंकर की 24वीं में पहला आदिनाथ भगवान होने वाला है, तो क्या देखना है कि इसका सम्यक दर्शन को देखना है। वहां केवल ज्ञान को देखने का जाएगा तो केवल ज्ञान तो है ही नहीं, वहां पहचान होगी। हाँ हाँ, वो एक पत्र में लिया है, पत्र में लिए है, वो बात लिया है। एम धारो કે ક્ષાયિક સંકેત આ કાળમાં ન હોય એવું સ્પષ્ટ જિન્નાગમને વિશે લખ્યું છે, માન્ય કરો કે જિન્નાગમને એસા લિખા હૈ કે અભી ક્ષાયિક સંકેત નહીં હોતા હૈ, માન લિયા જાય। અબ ઉતના વિચારના યોગ્ય હૈ કે ક્ષાયિક સંકેત માને ક્યા ક્યા સમજના, જિસમેં એક નવકાર મંત્ર જીતના ભી વ્રત ઓર પ્રત્યાખ્યાન હોતા नहीं है। इसका मतलब क्या कि दिन में 24 घंटे में एक दफे नवकार मंत्र बोल लेना है, नवकार का स्मरण कर लेना है एक दफे, ज्यादा नहीं, क्या उतना भी व्रत जिसको नहीं होता फिर भी क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, नवकार नहीं बोलता है वो तो भी। तथा वो जी विशेष तो तृण भव से, और नहीं तो वही भव को परम पद को प्राप्त होगा। ऐसी बड़ी आश्चर्यकारक की व्याख्या है, इस संकेत का प्रभाव ऐसा है। त्यारे तब ऐसे अभी ऐसी कौन सी दशा समझना चाहिए कि जो क्षायिक संकेत कही जाए। भगवान तीर्थंकर के में दृढ़ श्रद्धा, इसका नाम जो क्षायिक संकेत ऐसा गिनने में आए तो वह श्रद्धा कैसी समझनी कि जो श्रद्धा हम जानते हैं कि यह तो खचित इस काल में होती ही नहीं है, भगवान में श्रद्धा बहुत होती है, ऐसी कौन सी श्रद्धा है कि जो अभी नहीं होती है। हम तो भगवान को अच्छी तरह मानते हैं, हमारे तो भगवान के में श्रद्धा बिल्कुल है नहीं, तो फिर क्षायिक सम्यक दर्शन किसको कहना भगवान की श्रद्धा में। यदि ऐसा नहीं जानने में आता कि अमुक दशा के अमुक श्रद्धा को क्षायिक संकेत कहा है, तो फिर वो नहीं है ऐसा मात्र जिनागम में शब्द जिनागम के शब्द से जानने का हुआ ऐसा कहते हैं, वो तो मात्र जानने का हुआ। अब ऐसा धारो कि वह शब्द दूसरा आशय से किया हुआ है, कोई आशय अलग है उसमें, तो कोई पीछे के काल में विसर्जन रूप से लिखाया है, विसर्जन दोष से लिखाया है, तो पीछे से जो लिखाया है कि वो भी वर्तमान काल में नहीं है, तो उसका आग्रह करके जीव को प्रतिपादन किया हो, वह जीव कैसा दोष को प्राप्त होता है वो सफेद करुणा से विचारना योग्य है, इसके प्रति करुणा और खेदाना चाहिए, तो क्यों आग्रह रखता है? एक बहुत बढ़िया बात क्या किया, ज्ञानी ने या आगम ने कोई बात की हो और कोई खास आशय को लेकर के बात की हो, उस आशय को नहीं समझ करके उसको दूसरे आशय में खता करके अपने आत्मा को नुकसान कभी करना है? बहुत अच्छा न्याय है। फिर से ये न्याय थोड़ा मुमुक्षु जीव को समझने योग्य है कि ज्ञानी पुरुष ने गुरुदेव ने ऐसा कहा या हमारे आगम में ऐसा लिखा है, तो ज्ञानी की या आगम की सभी बात को आत्मकल्याण हो उसी आशय में ले जाना, लेकिन एक भी बात को आत्मा को नुकसान हुए ऐसे आशय में नहीं ले जाना, इतना ध्यान में रखने योग्य है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिसके प्रति कृपालु देव को करुणा आई है, इसलिए ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। हम शब्द को पकड़ते हैं, आशय को समझते हैं, कोई खास आशय को लेकर के कोई बात कही हो, व्यक्तिगत रूप से कोई बात चली हो, आशय ही देखना और उसकी सीमा में वो बात को समझना, लेकिन कभी अपने आत्मा को नुकसान हो जाए उस तरह से उसको खींचना नहीं चाहिए। बहुत महत्व की बात कर दिया है, ख्याल में आता है? तुम्हारे गण पर बहुत चलती है, इसलिए ये बात का स्पष्टीकरण देखो, कृपालु देव के मार्गदर्शन में वो बात आई, कृपालु देव के मार्गदर्शन में वो बात आई, ये कृपालु देव की कृपा है, फिर इसका निषेध करना ऐसी बात है। आजकल हमारे कोई मुमुक्षु कभी कभी कृपालु देव के विषय में कोई अनुचित परिणाम कर लेते हैं, भूल से भी, अज्ञान से भी, और उसमें फिर गुरुदेव का नाम जोड़ देते हैं, किसी दूसरे का नाम जोड़ देते हैं, ये अपने आत्मा को कल्याणकारी नहीं है, अकल्याणकारी है, ऐसा करना नहीं चाहिए। कॉमन सेंस तो इतनी तो होए तो ऐसा नहीं होगा, ये आउट ऑफ कॉमन सेंस है। क्यों? कि गुरुदेव जो है अपने प्रवचन में एक भी प्रवचन ऐसा नहीं करते थे कि जिसमें वो कृपालु देव के वचनों को का उद्धरण नहीं करते हो, आधार नहीं ले, ऐसा एक प्रवचन भी आपको मिलेगा नहीं। इतना आधारभूत वचनों होने पर भी कोई एक बात को, एक वचन को बहुवचन में खता लेना तो अपने को नुकसान का कारण बन जाएगा, ऐसा कभी होना चाहिए। निमित्त की पकड़ करते थे, शास्त्र के कुछ आधार लेकर के निमित्त की पकड़ करते थे, तो गुरुदेव कहते कि वितरागता होगी कहाँ से, निमित्त के प्रति राग करके तुमको वितरागता कैसे होगी वो तो बताओ, वो हेतु को तो देखते नहीं है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, आशय को वो समझते
नहीं,
ऐसा नहीं होना। ज्ञानी के प्रति हमारे अभक्ति के परिणाम हो, ऐसा कभी होना चाहिए। भक्ति कम हो वो भी वंचना बुद्धि है, तो अभक्ति के परिणाम में कितना नुकसान हो जाए, वो अनंत संसार का कारण बनेगा। जो बैंसरी थे उतने ज्ञानी थे, फिर भी हमेशा नित्य नियम में रात को सोते वक्त सुखदाम अनंत सुसंत चही दिन रात्र रहे तब ध्यान, कृपाल देव के वचनों को वो रटन करते थे। ज्ञान दशा में भी वो वचन पकड़ने लिया था। ज्ञानी तो बहुत हुए हैं, फिर भी कृपालु देव के कुछ वचन ऐसे हैं जिसको वचन अतिशय कहा जाए, कि ज्ञानी को भी आत्मभाव विशेष होता है तो मुमुक्षु को तो अनादर करने योग्य है ही नहीं। तो अपने को आत्मभाव का आविर्भाव होते थे तब तो रटन करते थे, वो नित्य नियम में थे। और अंतिम दिन भी वही हुआ है, समाधि मरण में भी वही बात आई है कि आपने सुखधाम किया कि मैंने मेरा सुखधाम कर लिया है। क्या बोले, एक दो बहनें जो वहाँ थी साथ में बोलते थे हमेशा, नित्य नियम में साथ में बोलते थे, तो कि चलो अपन सुखधाम बोले, तो कि मैंने मेरा सुखधाम कर लिया है, तुम अपना करो, मैंने तो कर लिया मेरा। वो नित्य नियम में वो बात क्यों थी कि अपने परिणाम में फर्क पड़ता था। ऐसे जो वचन योग होता है, अतिशय वचन योग होता है, जो आत्मभाव को आविर्भूत करने में निमित्त होवे ऐसा होता है, वो परम आदर करने योग्य है, अनादर करने योग्य नहीं है। जब ज्ञानी आदर करते हैं, महापुरुष आदर करते हैं, तो दूसरे को तो अनादर करने का सवाल होता ही नहीं है। हाँ, दस्तखत गया है तो बहुत, वो भी गुरुदेव के रटन की चीज थी। सुरताली शक्ति के साथ उसका भी रटन करते थे, क्यों, वो तो 17 वर्ष पहले लिखा हुआ है, 15-16 साल की उम्र में लिखा हुआ है, फिर भी उसमें कुछ रहा हुआ है, उस स्वभाव के संस्कार में से निकली हुई चीज थी। ये गुरुदेव के ज्ञान की गहराई है, उम्र नहीं देखते, उस वक्त सम्यक तो है कि नहीं है वो भी नहीं देखते, कहां से निकला उसका ओरिजिन मूल कहां है वो देखते हैं, कि स्वभाव में से निकला है तो ये स्वभाव है वो आदर करने योग्य है। संस्कार लेकर तो आए थे, वारंग का सार बोल दिया, क्योंकि स्वभाव में से निकला है वो निकल सकता है, संस्कार है उसको निकल सकता है। ऊपर ऊपर से मोटी मोटी बात, जाड़ी जाड़ी बात विचारवा वाला ने, सोचने वाले को ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रह जाओ, वो क्या करते हैं देख लो, उसका जीवन ही बोध स्वरूप है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वो क्या करते थे देख लो, उसका जीवन ही बोध स्वरूप होता है। अपने को बोध वहां से लेना है। क्या कहते हैं इधर, कि प्रत्यक्ष सर्वज्ञ पुरुष को भी यदि किसी कारण से या किसी विचार से, उनके प्रति विचार लंबा करके या उनका अवलंबन लेकर के प्रत्यक्ष दर्शन से, सम्यक दृष्टि रूप से भी न जाना हो, तो उसका आत्मा संबंधी कोई फल नहीं है, आत्म प्रबंधी कोई फल नहीं है, जड़ संबंधी फल आएगा, पुद्गल का पुण्य बंधेगा। परमार्थ से उसकी सेवा और सेवा से जीव को कोई जाति भेद नहीं होता। उसकी पूजा भक्ति सेवा सेवा पूजा करे या मत करे, कोई इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। पारमार्थिक लाभ नुकसान का कोई उसके संबंध नहीं रहता है। इसलिए उसे कुछ सफल कारण रूप से ज्ञानी पुरुष ने स्वीकार नहीं किया है ऐसा मालूम होता है। ज्ञानियों ने ऐसे प्रत्यक्ष समोसरण की पूजा भक्ति का स्वीकार किया नहीं है। ये तुम्हारी सब क्रिया अज्ञान रूपी पाड़ा है वो चबा गया, अज्ञान रूपी जो भैंसा है वो चबा गया उसको। ये बात दो पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण विषय की आई है कि पहचान सम्यक दर्शन से होती है, सम्यक्त्व से होती है, और एक की पहचान में तीनों की पहचान हो जाती है, क्योंकि तीनों में एक कॉमन फैक्टर है। इसलिए एक के पहचान में से दूसरे के तीसरे की सबकी पहचान हो जाती है। जो ज्ञानी को पहचानता है वही सर्वज्ञ को पहचानेगा, वही निग्रंथ को पहचानेगा। बाकी जो केवल ज्ञान से पहचान ली जाए तो सम्यक दर्शन को सम्यक दृष्टि को पहचान हो सकेगा नहीं, वो बात हो जाएगी। अब कुछ वर्तमान साधु के संबंध में कहते हैं, कई प्रत्यक्ष वर्तमानों से ऐसा प्रकट होता है कि यह काल विषम या दुष्म या कलयुग है। घना प्रत्यक्ष वर्तमानों ऊपर थी, वर्तमान वर्तते प्रसंग पर से जो चालू वर्त रहे हैं इसे मालूम पड़ता है कि ये काल बहुत विषम है या कलयुग है या दुष्म काल है। काल चक्र के परावर्तन में दुष्म काल पूर्व काल में अनंत बार आ चुका है। दुष्म काल तो अनंत आगे है, पंचमारा को दुष्म काल कहते हैं, छठा कारा को दुष्म काल कहते हैं, वो सब आरा में आता है। तथापि ऐसा दुष्म काल जो वर्तमान में है ऐसा दुष्म काल किसी समय ही आता है। बहुत खराब काल आया है, बहुत खराब काल आया है। जैन ग्रंथ के निंदक मुंडाओ सर्पिणी जोड़ा, मुंडाओ सर्पिणी काल है, मुंडाओ सर्पिणी बहुत खराब, मुंड मैंने बहुत खराब। और जैन प्रतिमा के निंदक मुंडाओ सर्पिणी जोड़ा, बहुत। दुष्म काल भी किसी समय आता है। श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसी परंपरागत बात चली आती है कि असंयति पूजा नाम से आश्चर्ययुक्त हुंड ढीठ ऐसे इस पंचम काल को तीर्थंकर आदि ने अनंत काल में आश्चर्य स्वरूप माना है। इतना खराब है, आश्चर्य हो जाए इतना खराब है। तो बात श्वेतांबर संप्रदाय के आगमों में परंपरा चली है कि बहुत खराब काल है, नव सर्पिणी काल है। संयति पूजा जिसको संयम नहीं है उसकी पूजा की जाए, उसको असंयति पूजा। जो साधु के वेश को धारण करते हैं फिर भी संयम पालते नहीं है और इसकी पूजा होती है, यह बात हमें बहुत करके अनुभव में आती है। मानो साक्षात ऐसी प्रतीत होती है, वर्तमान साधु संप्रदाय को देख करके हमको ये बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। काल ऐसा है संकेत किया है, ये बात खोल करके तो विरोध तो होता ही था, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखा है, संक्षेप में वो बात कर दी है। गड़बड़ बहुत है अभी, जो है गड़बड़ बहुत है। काल ऐसा है, क्षेत्र प्राय अनार्य जैसा है, आर्य क्षेत्र होने पर भी अनार्य जैसा है। अभी देखो हिंदुस्तान में हिंदुओं की बस्ती ज्यादा है, फिर भी 90% हिंदू मांसाहारी है। हिंदू मुसलमान तो मांसाहारी होते ही है, क्रिश्चियन तो मांसाहारी होते ही है, लेकिन हिंदू भी 90% मांसाहारी हो गए हैं। 10% गुजरात साइड में जो है उसमें मांसाहार कम है, बाकी गुजरात के बाहर निकलो खान पीन का ठिकाना नहीं है। जैनों के हिंदुओं के अच्छे अच्छे घराने में दारू और मांसाहार चालू हो गया है, और अंडा तो बिल्कुल चालू हो गया है। क्षेत्र प्राय नार्य जैसा है, वहाँ स्थिति है, वहाँ रहना पड़ा है, अभी वहाँ स्थिति है। प्रसंग द्रव्य काल आदि कारणों से सरल होने पर भी लोक संज्ञा रूप से गिनने योग्य है। क्या लिखा है? प्रसंग द्रव्य काल आदि कारण से सरल छता लोक संज्ञा पणे गणवो घटे छे। मतलब कोई धर्म का अभी प्रसंग चल रहा है, लेकिन लोक संज्ञा वाले जीव उसमें ज़्यादा आते हैं। जो भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, देखा देखी हो जाती है, वो तो लोक संज्ञा है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आलम्बन बिना निराधार रूप से जैसे आत्मभाव का सेवन किया जाए वैसा सेवन करता है। द्रव्य क्षेत्र काल ने भावना आलम्बन बिना निराधारपणे जेम आत्मापणु भजाए तेम भजे छे, तेम अमारो आत्मा बारमा सर्वज्ञ नथी, बारमा निग्रंथ गुरुओ नथी, એમના આલંબન વિના પણ સહેજે જેમ આત્મા પણ ભજાય તેમ ભજે છે અમારો આત્મા। બીજો સૌ ઉપાય કે અત્યારે બીજો કોઈ ઉપાય નથી, નહીતર આ ક્ષેત્રમાં તો અનેક ધર્માત્માઓ હોવા જોઈએ, એના બદલે અત્યારે દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ છે, શું કરીએ? એનો ઉપાય શું કે છે? એસકા કોઈ ઉપાય હૈ?
हरि देव श्री मंगल भगवान।